दो, मध्यकाल। यह काल बौद्धिक चिंतन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तक कि इसे इतिहासकार अंधकार का युग की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इस युग की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह, ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों के बाद व्यापक अराजकता का समय आया। इस बीच रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी 2 टुकड़ों में टूट गया। इस उथल पुथल के फलस्वरूप रोम का महत्व लुप्त हो गया और पश्चिमी यूरोप पर 5वीं शताब्दी के बाद अंधकार का अभेद्य पर्दा पड़ गया, जिसके साथ राजनीतिक अस्तव्यस्तता और मानसिक पक्षपात का आगमन हुआ। इस समय के बाद विद्या का ह्रास हो गया, प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो गए और रोमन शैक्षिक विधान का, जिसने कि पश्चिम में प्राचीन अध्ययन के क्रम को बनाए रखा था, सहसा अंत हो गया। ज्ञानार्जन की पूर्व परंपराएं नष्ट हो गईं और बौद्धिक कार्यकलाप से लोगों के मन विरत हो गए। उद्धरण चिन्ह बंद, पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पृष्ठ 116-17। इस युग के साहित्य चिंतकों में मुख्यतः इटालियन साहित्यकार दांते का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने एक ओर अपने डिवाइन कॉमेडी में अन्योक्ति पद्धति की सम्यक रूप से प्रतिष्ठा की, तो दूसरी ओर उन्होंने काव्य के विभिन्न पक्षों पर नए विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने परंपरागत मृत भाषा की अपेक्षा जीवित जनभाषा को साहित्य के लिए अधिक उपयुक्त समझा, अतः उन्होंने जनभाषा का समर्थन जोरदार शब्दों में किया। इसी प्रकार काव्य विषय के संबंध में भी निर्णय देते हुए उन्होंने 3 विषयों को, युद्ध, प्रेम और नैतिक सौंदर्य को, उत्तम घोषित किया। काव्य शैली का भी उन्होंने निजी दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए। अस्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि दांते ने काव्य शास्त्र के कई पक्षों पर नए विचार प्रस्तुत किए जो पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। 3, आधुनिक युग। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आधुनिक युग का सूत्रपात करने का श्रेय सर फिलिप सिडनी 16वीं सदी को है, जिन्होंने अपने निबंध द डिफेंस ऑफ पोएटिक, कविता की वकालत में सुधारवादियों के इस आक्षेप का निराकरण किया कि कविता अनाचार एवं अनैतिकता का प्रचार करती है। उन्होंने प्लेटो के मतों को भी संशोधित रूप में प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया कि प्लेटो का आक्षेप केवल अनैतिक साहित्य के संबंध में है, सारे साहित्य के संबंध में नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतिवादी दृष्टिकोण से काव्य को उपयोगी सिद्ध करते हुए उसके पक्ष में कई तर्क दिए। जैसे, कविता मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाती है, वह नैतिकता की शिक्षा प्रभावशाली ढंग से दे सकती है तथा वह एक आदर्श एवं श्रेष्ठ जगत की कल्पना प्रस्तुत करती है। इस प्रकार सिडनी ने अपने लेख के द्वारा काव्य संबंधी परंपरागत दृष्टिकोण बदलने का स्तुत्य प्रयास किया। 17वीं सदी के आलोचकों में जॉन ड्राइडन का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अनेक नई स्थापनाएं प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ ये हैं। 1, कवि का कार्य जीवन को स्वाभाविक रूप में चित्रित करना है। 2, कविता का मुख्य लक्ष्य आनंद देना है, शिक्षा देना गौण है। 3, कवि बिंबों के माध्यम से भावनाओं का चित्रण करता है। 4, कवि कल्पना शक्ति के आधार पर काव्य रचना करता है। 5, अरस्तु के संकलन त्रय का निर्वाह आवश्यक नहीं है। ड्राइडन ने नई मान्यताओं के द्वारा अनेक परंपरागत धारणाओं पर तीखा प्रहार किया। विशेषतः कवि कल्पना संबंधी मत से अरस्तु का अनुकृत सिद्धांत निराधार सिद्ध हो जाता है। 18वीं सदी के साहित्यिक चिंतकों में पोप, जॉनसन, लेसिंग, शिलर और गेटे का महत्वपूर्ण स्थान है। पोप ने परंपरागत तत्वों को अपनाते हुए भी नए दृष्टिकोण का परिचय दिया। उन्होंने कविता में स्वाभाविकता एवं भावनात्मकता को प्रमुखता देते हुए लिखा, उद्धरण चिन्ह, प्रकृति की भांति कविता में भी जो हमारे मन को प्रभावित करती है, उसके पृथक पृथक अंग प्रत्यंगों की सुडौलता नहीं होती। हम एक आंख अथवा अधर को सौंदर्य की संज्ञा नहीं देते, सौंदर्य उन सबकी सम्मिलित शक्ति एवं निष्पक्ष परिणाम की संज्ञा है। उद्धरण चिन्ह बंद, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा, पृष्ठ 102 से 105। काव्यानंद का स्रोत भावात्मकता को मानते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया, उद्धरण चिन्ह, परंतु ऐसी कविताओं पर जिनमें न ज्वार आता है न भाटा, जो शुद्ध होते हुए भी भाव विहीन होते हैं, जो एक ही रीति से मंद मंद प्रवाहित होती हैं, जो दोषों से बचती हुई एक ही बंधी बधाई गति अपनाए रहती हैं, हम दोष भले न लगाएं परंतु उनसे ऊब कर सो तो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह बंद, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा पृष्ठ 102 से 105। पोप ने स्वाभाविकता एवं सहजता का अनुमोदन करते हुए भी काव्याभ्यास का समर्थन किया, क्योंकि उनके विचार से उद्धरण चिन्ह लेखक में सच्ची सहजता कला अभ्यास से आती है, संयोग से नहीं। जैसे जिन्होंने नृत्य कला सीखी हो उनकी गति में सबसे अधिक सहजता होती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा पृष्ठ 102 से 105। इस प्रकार साहित्य की विभिन्न समस्याओं के संबंध में उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। डॉक्टर जॉनसन अपने युग के सबसे अधिक प्रभावशाली आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन सिद्धांतों को नए रूप में प्रस्तुत करते हुए उनका दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि साहित्य में जब सामान्य मानव स्वभाव का उद्घाटन होता है तो दर्शक या पाठक उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करता है। आलोचना का सिद्धांत शिवदान सिंह चौहान पृष्ठ 100। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि काव्य न केवल आनंद प्रदान करता है, वह हमें शिक्षा भी देता है। प्राचीन और नवीन के बीच उन्होंने भी पोप की भांति समन्वय का मार्ग अपनाते हुए अपना मत व्यक्त किया है। उद्धरण चिन्ह लेखक का प्रथम प्रयास प्रकृति और परंपरा में भेद करना होना चाहिए, अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा उपयुक्त होने के नाते हुई है और जो प्रतिष्ठित हो जाने के कारण ही उपयुक्त है, इन दोनों का भेद उसे हृदयंगम कर लेना चाहिए, जिससे वह नवीनता लाने की लालसा में अनिवार्य सिद्धांतों का अतिक्रमण न करे और न ऐसे नियमों को जिनके प्रवर्तन का अधिकार किसी साहित्यिक तानाशाह को न था तोड़ने के अनावश्यक डर के मारे अपनी दृष्टि की परिधि में आए हुए सौंदर्य का समावेश करने से विमुख हो। उद्धरण चिन्ह बंद पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा पृष्ठ 118। अपनी इस नीति के कारण उन्होंने त्रासदी और कामदी आदि के संबंध में प्रचलित अनेक रूढ़ियों का बहिष्कार निर्ममतापूर्वक किया। लेसिंग, गेटे, शिलर आदि जर्मन आलोचक मूलतः साहित्य सर्जक थे, किंतु उन्होंने साहित्य की समस्याओं पर भी गौण रूप से विचार किया है। लेसिंग ने कला की प्रेषणीयता पर सर्वाधिक बल देते हुए इस पक्ष का विश्लेषण प्रस्तुत किया। गेटे ने काव्य के विभिन्न रूप भेदों और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करते हुए क्लासिक काव्य को स्वस्थ, प्राणवान एवं आनंददायी तथा रोमांटिक काव्य को रुग्ण, दुर्बल एवं विकृत सिद्ध किया। कविता की विषय वस्तु के संबंध में भी उन्होंने मौलिक सामग्री की अपेक्षा परंपरागत वस्तु को ही अपनाने का उपदेश देते हुए नए कवियों को बताया कि उन्हें अपने आत्म तत्व के अनुकूल ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। उनके शब्दों में उद्धरण चिन्ह उपलब्ध सामग्री के आधार पर सारा कार्य सहज ही और अच्छे ढंग से निष्पन्न हो जाता है तथा और चरित्र तथ्य और चरित्र उपलब्ध हों तो कवि को केवल उनमें प्राण संचार करना होता है। वस्तुतः मैं तो उन्हीं विषयों के चयन का परामर्श दूंगा जिन पर पहले कार्य हो चुका हो। हमारे अधिकांश युवा लेखकों में इसके सिवाय कोई दोष नहीं कि उनका आत्म तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता। उन्होंने अरस्तु के काव्यशास्त्र में नया परिशिष्ट जोड़कर अरस्तु के अनेक संदिग्ध मतों की व्याख्या करने का प्रयास किया था। शीलर मूलतः नाटककार थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख सरल तथा भावप्रवण कविता में सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य कला की व्याख्या तथा उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण प्रयास किया। उन्होंने अपने युग के प्राचीन यूनानी युग से तुलना करते हुए भावानुभूति की प्रक्रिया के संबंध में लिखा है। उद्धरण चिन्ह प्राचीन यूनानियों की बात सर्वथा भिन्न थी। उनके समय में सभ्यता का ह्रास नहीं हुआ था, न वह अतिवादिता की ऐसी सीमा तक पहुंची थी कि प्रकृति से संबंध विच्छेद आवश्यक हो जाता। उनके सामाजिक जीवन का संपूर्ण ढांचा किसी कृत्रिम अवधारणा में विश्रांति न पाकर भावनाओं में या कलाकृति में विश्रांति पाता था। अतः यदि वे मनुष्य से बाहर प्रकृति को देखते थे तो उनके लिए आश्चर्यान्वित होने का कोई कारण न होता था और न उन्हें किन्हीं ऐसे माध्यमों की आवश्यकता का अनुभव होता था जिनके द्वारा वे प्रकृति का पुनः अन्वेषण कर सकें। लेकिन हम अपने आप में सामंजस्य नहीं रख पाते। हमने मानवता के जो भी अनुभव किए हैं उनसे हम असंतुष्ट हैं, अतः हम उससे दूर भागने के सिवा कोई रुचि उसके प्रति नहीं रख पाते। हम उस अपरूप आकार को अपनी दृष्टि से ही दूर ही रखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह बंद पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा पृष्ठ 126। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन जर्मन साहित्यकारों ने साहित्य की व्यवहारिक समस्याओं को युग परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में रखकर विचार किया, जो दृष्टि की वैज्ञानिकता को सूचित करता है। 19वीं सदी में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रवर्तन एवं विस्तार हुआ। जिसके अग्रगामी नेताओं में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और शैली का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में रूढ़िवादिता, शास्त्रवादिता, नियमबद्धता, विचारात्मकता, पूर्वाभ्यास की पद्धति का विरोध करते हुए नवीनता, स्वच्छंदता, वैयक्तिकता, भावात्मकता एवं सहजता की प्रतिष्ठा की। वर्ड्सवर्थ ने लोक भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का समर्थन करते हुए दोनों के अंतर को अस्वाभाविक एवं घातक सिद्ध किया। उन्होंने काव्य को अभ्यास एवं कौशल द्वारा रचित न मानकर शांत क्षणों के सहज भावोद्रेक के रूप में रचित स्वीकार किया। कवि के लिए शिक्षा, नैतिकता एवं उपदेश देने के बंधन को उन्होंने अनुचित बताते हुए काव्य को ही काव्य का मूल लक्ष्य स्वीकार किया। इसी प्रकार कॉलरिज ने कविता का विरोध गद्य से न मानकर विज्ञान से माना। काव्य मौलिक रचना नहीं अपितु अनुकृति है। इस स्थापना पर कुठाराघात करते हुए उन्होंने कल्पना सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, जिससे प्रमाणित हो जाता है कि कल्पना जन्य कृति होने के कारण काव्य को नूतन सृष्टि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। शैली ने भी वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज के सिद्धांतों का समर्थन पूरी शक्ति से किया, अस्तु परंपरागत मान्यताओं में परिवर्तन एवं संशोधन करने की दृष्टि से स्वच्छंदतावादी काव्य चिंतकों का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं शती के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे विचारकों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अति स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए स्वच्छंदता, वैयक्तिकता एवं आनंदवादिता के स्थान पर पुनः मर्यादा, सामाजिकता एवं उपयोगिता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसमें मैथ्यू आर्नल्ड, रस्किन, तॉल्स्टॉय आदि प्रमुख थे। आर्नल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना के रूप में स्वीकार करते हुए नैतिक मूल्यों एवं मानव हित को काव्य के लिए श्रेयस्कर सिद्ध किया। उन्होंने काव्य की विषय वस्तु के रूप में भी उदात्त कार्यों एवं चिरंतन भावनाओं को अपनाए जाने का समर्थन करते हुए लिखा, उद्धरण चिन्ह, समस्त राष्ट्रों में सदा सर्वदा काव्य के शाश्वत विषय क्या रहे हैं? कार्य व्यापार, मानव के कार्य व्यापार, उनमें एक निहित रोचकता होती है। उद्धरण चिन्ह बंद। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पृष्ठ 135 से 136। यदि कवि समझता है कि सब कुछ उसी की शक्ति में है कि वह अपनी प्रतिपादन कला से किसी मूलतः निकृष्ट कार्य व्यापार को उत्कृष्ट कार्य व्यापार के समान आनंददायक बना सकता है, तो उसका यह विचार मिथ्या है। अतः सर्वप्रथम तो कवि को उत्कृष्ट कार्य व्यापार का चयन न कर लेना चाहिए। और सबसे उत्कृष्ट कार्य व्यापार कौन से होते हैं? निश्चय ही जो मानस के सहज संस्कारों को सबसे अधिक आंदोलित करें, उन मूलवर्ती भावनाओं को आंदोलित करें जिनका जातीय मानस में स्थायी वास होता है और जो काल निरपेक्ष होती हैं। ये भावनाएं स्थायी और परिवर्तनशील होती हैं और इनके अनुरंजन के साधन भी स्थायी और परिवर्तनशील होते हैं। उद्धरण चिन्ह बंद। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पृष्ठ 194। आर्नल्ड की ही भांति रस्किन और तॉल्स्टॉय ने भी कला और साहित्य को जीवन के उच्चादर्शों से संबंधित किया। जहां रस्किन ने कला को आध्यात्मिक एवं नैतिक तत्वों के अभिव्यक्ति के एक पवित्र माध्यम का रूप दिया, वहां तॉल्स्टॉय ने उसे हमारी उदात्त भावनाओं के उद्वेलन की शक्ति से युक्त सिद्ध किया। अस्तु इन आचार्यों ने काव्य की लोक हितवादी दृष्टिकोण से सुंदर व्याख्याएं प्रस्तुत की। 20वीं शताब्दी का काव्यशास्त्र विभिन्न वादों एवं बहुमुखी प्रवृत्तियों से ग्रसित रहा है। इसमें मुख्यतः कलावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा, समाजवादी या प्रगतिवादी विचारधारा आदि उल्लेखनीय हैं। इन वादों एवं प्रवृत्तियों के उन नायकों ने एकांगी दृष्टिकोण से साहित्य की विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं जो परस्पर विरोधी हैं। उनसे साहित्य का स्वरूप स्पष्ट कम हुआ है, उसके संबंध में मिथ्या धारणाओं एवं भ्रांतियों का प्रचार अधिक हुआ है। इन नाना मत मतांतरों के कारण आज समीक्षा के क्षेत्र में अराजकता की सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिस तत्व को एक गुण मानता है उसी को दूसरा दोष मानता है। ऐसी परिस्थिति में आईए रिचर्ड्स, हर्बर्ट रीड, एफएल ल्यूकस जैसे विद्वानों ने साहित्य शास्त्र को विज्ञान एवं मनोविज्ञान के आधार पर व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है, किंतु इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य बाकी है। श्री हर्बर्ट डिंगल तथा उनके अन्य कई साथियों ने साहित्य समीक्षा को वैज्ञानिक रूप देने का आंदोलन चलाया, किंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। अतः आज काव्य चिंतन के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति चल रही है। हर आलोचक का काव्य के संबंध में अलग अलग सिद्धांत है, अतः कह सकते हैं कि हर आलोचक की अलग अलग ढपली और अलग अलग राग है। यह स्थिति स्वयं स्वस्थ एवं संतुलित समीक्षा के लिए भी घातक है। साहित्य के सार्वभौम सिद्धांतों की स्थापना। यद्यपि भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतन के क्षेत्र में लगभग 2500 वर्षों के काव्य के स्वरूप, उसके विभिन्न तत्वों एवं उसके विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाओं पर शताधिक विद्वानों द्वारा विचार हुआ है, किंतु दुर्भाग्य से इस दीर्घ एवं बहुव्यापी प्रयास के बावजूद भी काव्यशास्त्र की उपलब्धियाँ नगण्य हैं। इससे अधिक विडंबना क्या होगी कि शताब्दियों के चिंतन के बाद भी हम कविता या साहित्य की कोई एक ऐसी परिभाषा तक स्थिर नहीं कर पाए जो कि सर्वांगीण हो, सर्वव्यापक हो एवं सर्वमान्य हो। यदि साहित्य के किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि कविता का लक्षण क्या है, तो इसके उत्तर में वह भरत मुनि से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक या अरस्तु से लेकर हर्बर्ट रीड तक के शताधिक विद्वानों की कई सौ परिभाषाएँ गिना देगा, किंतु वह कोई एक परिभाषा बताने की स्थिति में नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सहस्राधिक वर्षों के चिंतन मनन के बाद भी हम कविता, काव्य या साहित्य के विभिन्न पक्षों, जैसे कि साहित्य के तत्व, उसके भेदोपभेद, उसके सृजन प्रक्रिया, उसकी आस्वादन प्रक्रिया आदि के संबंध में किसी एक सर्वमान्य मत की स्थापना करने में सफल नहीं हो सके। यह दूसरी बात है कि प्रत्येक विषय पर परस्पर विरोधी मतों के ढेर लग जाए। वस्तुतः काव्यशास्त्र के क्षेत्र में जितने अधिक विद्वान आए, उतनी ही उसमें परिभाषाएं, विचारधाराएं एवं परस्पर विरोधी धारणाएं एकत्रित होती गईं। ऐसे स्थिति में साहित्य के पाठक के लिए यह समस्या है कि वह किस मत को ग्राह्य समझे और किसको त्याज्य। परंपरागत काव्यशास्त्र की एक बहुत बड़ी सीमा यह भी है कि वह देश काल की सामयिक अवधारणाओं से आबद्ध है, इसलिए उसमें सार्वजनीनता या विश्वव्यापकता का, यूनिवर्सिलिटी का अभाव है। काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के पूर्व भारतीय या पाश्चात्य जैसे विशेषणों का प्रयोग करना ही यह सिद्ध करता है कि यह सिद्धांत देश विशेष की सीमाओं से आबद्ध है। उदाहरण के लिए, हम मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र आदि के पूर्व कभी भी भारतीय या पाश्चात्य विशेषण का प्रयोग नहीं करते। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी सिद्धांत को भारतीय भौतिक विज्ञान या पाश्चात्य भौतिक विज्ञान की संज्ञा नहीं देते, जबकि काव्यशास्त्र के क्षेत्र में ऐसा होता है। यदि हमें काव्यशास्त्र के सिद्धांतों को भी सर्वव्यापक या यूनिवर्सल रूप देना है, तो उन्हें शास्त्र की रूढ़ियों से मुक्त करके विज्ञान की पद्धति के आधार पर प्रतिष्ठित करना होगा। कोई भी सिद्धांत जो कि सर्वव्यापी होता है, वह व्यक्ति विशेष की दृष्टि तक सीमित नहीं रहता, जबकि काव्यशास्त्र के प्रायः सभी सिद्धांत व्यक्तियों के नामानुक्रम से प्रचलित हैं, जैसे अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत आदि। इस प्रकार ये सिद्धांत व्यक्ति विशेष की सीमित दृष्टि, विशिष्ट दृष्टिकोण और उसके पूर्वाग्रहपूर्ण प्रयासों के द्योतक हैं, जो अपने आप में इन सिद्धांतों की सीमाओं के सूचक हैं। इन सिद्धांतों को यूनिवर्सल रूप देने के लिए उन्हें व्यक्ति विशेष की दृष्टि, सीमा, दृष्टिकोण एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करना होगा। परंपरागत काव्य सिद्धांतों में से विशेषतः आधुनिक युग के पाश्चात्य सिद्धांतों में एक दोष यह भी पाया जाता है कि वे साहित्येतर विषयों जैसे राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, शैली विज्ञान आदि से प्रेरित एवं प्रभावित हैं। इस प्रकार के साहित्येतर सिद्धांत साहित्य के आधारभूत तत्व सौंदर्य की उपेक्षा करते हुए काव्य रचनाओं या साहित्यिक कृतियों को राजनीतिक प्रचार, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषणात्मक स्थापनाओं, भाषा वैज्ञानिक पद्धतियों के आरोपण का माध्यम बना लेते हैं। हमारे विचार से साहित्येतर विषयों के ज्ञान का उपयोग उसी सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक वह साहित्य की साहित्यिकता का उद्घाटन करने में सहायक सिद्ध होता है, किंतु आज इन इतर शास्त्रों की अवधारणाओं का प्रयोग इस तरह हो रहा है कि जिससे साहित्य की साहित्यिकता हितिरोहित, उपेक्षणीय एवं गौण होती जा रही है। साहित्य विज्ञान की स्थापना। साहित्य चिंतन की उपर्युक्त सभी त्रुटियों के निराकरण का एकमात्र उपाय यही है कि हम काव्यशास्त्र या साहित्य शास्त्र का वैज्ञानिक पद्धति से संशोधन एवं परिष्कार करते हुए उसे साहित्य विज्ञान में परिणत करें। इसके अंतर्गत परंपरागत सभी सिद्धांतों को काल क्रम से या कवियों के क्रम से न लेकर विषय क्रम से लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, साहित्य का आधारभूतत्व क्या है। इस शीर्षक के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के उन सही मतों का विचार किया जा सकता है जो कि इस प्रश्न से संबंधित है। फिर इन सही प्रश्नों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए उन तत्वों का निर्देश किया जा सकता है जो कि संगत एवं सार्थक हैं। शेष को ठुकराया जा सकता है। फिर इन संगत तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किसी एक सामान्य निष्कर्ष की उपलब्धि की जा सकती है। इसी प्रकार साहित्य के अन्य पक्षों तत्वों एवं क्रिया प्रतिक्रियाओं का अनुशीलन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा हम साहित्य के प्रत्येक विषय के संबंध में किसी निश्चित प्रामाणिक सर्वांगीण एवं सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। उसी स्थिति में हम साहित्य संबंधी विभिन्न जिज्ञासाओं, शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान सर्वमान्य रूप में कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने अपने डिलीट के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध, साहित्य विज्ञान या साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन में उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति एवं विनम्र प्रयास किया है, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अनेक ऐसे सिद्धांतों की स्थापना की है जो कि साहित्य के शाश्वत तत्वों पर आधारित होने के कारण सार्वभौम एवं सार्वकालिक अथवा यूनिवर्सल कहे जा सकते हैं। मुख्यतः वे सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक, साहित्य की आधारभूत शक्ति के रूप में आकर्षण शक्ति सिद्धांत। दो, साहित्य की विषय वस्तु का वैज्ञानिक विश्लेषण। तीन, साहित्य की शैली के रूपांतरण की प्रक्रिया का सिद्धांत। चार, साहित्य की सृजन प्रक्रिया का सिद्धांत। पाँच, साहित्य की आस्वादन प्रक्रिया का सिद्धांत। छह, साहित्य की विकास प्रक्रिया का सिद्धांत। उपर्युक्त सभी सिद्धांत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित एवं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण सर्वव्यापी कहे जा सकते हैं, किंतु हिंदी समीक्षा का दुर्भाग्य है कि उसमें आज तक या तो संस्कृत के परंपरागत सिद्धांतों रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य या पाश्चात्य समीक्षा के आधुनिक तत्वों व समीक्षा पद्धतियों की चर्चा बराबर होती रही है। वह स्वयं हिंदी के विद्वानों द्वारा हिंदी में प्रतिपादित सिद्धांतों की सदा उपेक्षा करता रहा है। इसी का परिणाम यह है कि आज हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में व्यवहित एक भी ऐसा सिद्धांत दृष्टिगोचर नहीं होता जो कि हिंदी का अपना हो। वह या तो संस्कृत की परंपरा पर आधारित है या पश्चिम से उधार लिया हुआ है। वस्तुतः यह स्थिति हमारी आत्मलघुता, हीनता एवं पराधीनता की द्योतक है जो कि हिंदी समीक्षा के स्वतंत्र विकास के लिए अत्यधिक घातक है। संभवतः जिन साहित्यकारों एवं समीक्षकों की जीवन दृष्टि का विकास परतंत्र भारत या पराधीनता के वातावरण में हुआ, उनके लिए एकाएक आत्महीनता की भावना से मुक्त हो पाना कठिन है। किंतु हमारा विश्वास है कि भविष्य का हिंदी चिंतक, जो कि स्वतंत्रता के वातावरण से विकसित हो रहा है, अवश्य ही हिंदी समीक्षा को इस आत्महीनता एवं परावलंबता से मुक्त करके उसे सार्वभौम या विश्व समीक्षा के स्तर तक पहुँचाने में योग देगा। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक सर्वेक्षण शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।